हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 2 श्लोक संख्या 14-22। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तत्थाम वृन्दावनम् रम्याकाशिदुपासना व्रजवधू वर्गेनया कल्पिता। श्रीमद् भागवतम् प्रमाणममालम् प्रेम पुमर्थोमः श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो न पर वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीता धरुण बिंब फल धरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात् हरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जानि। करारविंदे न पदारविंदम् मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवेपि बस्व मृतुमेतदेव गोविंद दामो धर्माधवीति बर्हापीडं नटवरवपु कर्णियो कर्णिकार बिभ्रात्वा सह कनकपिशं वैजन्तीं च माल्यम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूर्णयोर्गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् कीर्तकीर्ति। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशो जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण के गौर प्रेमंद श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 2 जिसका शीर्षक है भगवान कृष्ण का स्मरण। जैसे ही विदुर जी ने उद्धव से भगवान से संबंधित प्रश्न पूछे, तो भगवान की स्मृति इस प्रकार उनके हृदय पे छा गई कि उन्हें याद ही ना रहा कि अपने शरीर का कोई होश ही ना रहा। बड़ी मुश्किल से संभलते हुए उद्धव जी विदुर जी को भगवान के विरह के विषय में बता रहे हैं कि जिस तरह से सूर्य के अस्त होने से सारे संसार में अंधकार हो जाता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण संसार से चले गए, वो सूर्य की तरह हैं और हम सबका हृदय वो उस धरातल की तरह जहाँ से सूर्य विदा ले लेते हैं तो वहाँ केवल अंधकार, तो हमारे जीवन में केवल अंधकार हो गया है। अब वहाँ क्या कुशल पूछते हो, क्या कोई भक्त कृष्ण की अनुपस्थिति में आनंदित रह सकता है? परंतु हम यदुवंशियों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य कि साक्षात नारायण त्रिलोकी के नाथ हमारे साथ थे, हमारे साथ उन्होंने रहना स्वीकार किया, परंतु हमारा कितना दुर्भाग्य है कि उनको पहचान नहीं सके। जिस प्रकार उसी क्षीर सागर से उत्पन्न हुए चंद्रमा को वहाँ की मछलियाँ नहीं जान पाती, हम भी उसी तरह से हमारे साथ रहते हुए कृष्ण को नहीं जान पाए। भगवान जब संसार में थे वो ऐसी अद्भुत लीलाएं करते थे कि उनको देखकर सारी त्रिलोकी बड़े बड़े देवता भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। वो इतने सुंदर, इतने माधुर थे कि जब भी उनको कोई देखता था, यहाँ के साधारण लोग उनको भगवान नहीं समझते थे, बल्कि उनको ऐसा लगता था ये तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होगी। और ब्रह्मा जी के पास जितना कला है, ब्रह्मा जी ने अपनी सारी सुंदर पुरुष बनाने की सारी कला इस कृष्ण को बनाने में संपन्न कर दी, समाप्त कर दी। अब कुछ नहीं रहा, अब वो क्या बनाएगा? तो यूं जब भगवान के शुद्ध भक्त आपस में वार्तालाप करते हैं, उनके मध्य में हुई वार्तालाप को श्रवण करके हमारे हृदय में जो कृष्ण प्रेम है, जो अभी सोया हुआ है, वो जागृत होता है। कृष्ण के प्रति हमारी भक्ति वो प्रगाढ़ होने लगती है। इसलिए बड़े प्रेम और भाव से हम आगे के श्लोकों को उच्चारण करेंगे। श्लोक नंबर 14, उद्धव जी कहते हैं, यस्यानुराग लुतः सरास लीलावलोक प्रतिलब्धमाना व्रजस्त्रियो दृग्भिरनु प्रवृत्त धियो वतस्थो किल कृत्य शेष यस्यानुराग लुतरास्य रास लीलावलोक प्रतिलब्धमाना व्रजस्त्रियो दृग्भिरनु प्रवृत्त धियो वतस्थो किल कृत्य शेष। भगवान की अद्भुत माधुर्य लीलाओं का वर्णन करते हुए उद्धव विदुर जी से कहते हैं, यस्यानुराग, यस्या जिसकी, अनुराग यानी आसक्ति, प्लुत अर्थात वर्धित, कैसे अनुराग था, हास रास, कभी वो हंसी मजाक करते थे, कभी रास विलास करते थे, विनोद करते थे, लीलावलोक प्रतिलब्धमान, लीलाएं करते थे बहुत ही आश्चर्यजनक और माधुर्य प्रेम से परिपूर्ण। अवलोक चित्वन प्रतिलब्ध से प्राप्त माना व्यथित। फिर क्या होता था, हास विलास करने के बाद, प्रेम भरी लीलाएं करने के बाद, व्रज स्त्रियो दृग भिर नु प्रवृत ब्रजस्त्री उन्हें ब्रज की बालाएं दृग्गभी अर्थ आंखों से अनुप्रवृत्ता अनुगमन करती थी। कब? दियो वतस्थो किल कृत्य शेषा, दियो अर्थात बुद्धि के द्वारा, वतस्थो चुपचाप बैठ गई, किल निसंदेह कृत्य शेषा, कुछ कार्य नहीं होता था उनसे। जब कृष्ण के साथ होती थी तो केवल कृष्ण के ही उनकी बातों को, उनकी लीलाओं को निहारती थी और आनंद विभोर होती थी। और जब कृष्ण चले जाते थे तो बस उन्हीं का विचार मन में रहता था और बस एक ही रट लगाए रहती थी, वेदना इन अखियन को सुख सृजे ही नाही, देखत बने न देखते बिन देखे अकुला। हे भगवान, क्या करें इन हमारी इन नेत्रों को लगता है सुख अच्छा ही नहीं लगता। हमारे नेत्रों का तो केवल एक ही सुख है कि वो कृष्ण को निहारे। जब वो समक्ष होते हैं तो ये नेत्र ऊपर ही नहीं उठते, उनके दर्शन करने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। और बिन देखे खुला है जब चले जाते हैं तो ये नेत्र उनका ही पीछा करते रहते हैं कि कब वो आए, कब वो दर्शन दें। अनुवाद देखिए, हंसी विनोद तथा देखा देखी की लीलाओं के पश्चात व्रज की बालाएं कृष्ण के चले जाने पर व्यथित हो जाती। वे अपनी आंखों से उनका पीछा करती थी, अतः वे हतबुद्धि होकर बैठ जाती और अपने घरेलू कामकाज पूरा न कर पाती। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, वृंदावन में अपनी बालावस्था में भगवान कृष्ण समवयस्का सारी बालाओं को दिव्य प्रेमवश छेड़छाड़ करने के लिए प्रख्यात थे। उनके प्रति कृष्ण का प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि उस आनंद की कोई तुलना नहीं है। और व्रज बालाएं उन पर इतनी अनुरक्त थी कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महान देवताओं के भी स्नेह से बढ़कर उनका स्नेह था। भगवान कृष्ण ने अंत में गोपियों के दिव्य स्नेह के समक्ष अपनी पराजय स्वीकार की और घोषित किया कि वे उनके विशुद्ध स्नेह से कभी ऊरण नहीं हो सकते, आपके प्रेम का कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकता। यद्यपि गोपियां भगवान के तंग करने के व्यवहार पर व्यथित प्रतीत होती थी, किंतु जब कृष्ण उन्हें छोड़कर जाते थे तो वे इस विरह को ना सह पाती और अपने नेत्रों तथा मन से उनका पीछा करती थी। वे इस स्थिति से इतनी स्तब्ध होती कि वे अपने घरेलू कामकाज पूरा न कर पाती। युवकों तथा युवतियों के मध्य प्रेम व्यापार में भी कोई उनसे आगे ना बढ़ सकता। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान स्वयं कभी भी वृंदावन की सीमा से बाहर नहीं जाते। वृंदावने परित्यज्यं पादम एकं न गच्छति, वृंदावन को छोड़कर भगवान एक कदम भी नहीं जाते। वे वहां के निवासियों के दिव्य प्रेम के वशीभूत होकर निरंतर वहां रह जाते हैं। इस तरह यद्यपि आजकल के दृष्टिगोचर नहीं है, किंतु वे क्षण भंग के लिए भी वृंदावन से दूर नहीं जाते। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारी दृष्टि मलिन है, जिसके कारण वो असक्षम है भगवान के दर्शन करने के लिए। वैसे तो भगवान कण कण में है, हर क्षण हर जगह पर वो अवस्थित रहते हैं, परंतु वृंदावन के लिए तो उन्होंने घोषणा कर दी है। इसलिए एक भक्त के हृदय में सदैव हर समय ये इच्छा होनी चाहिए कि भगवान हमें वृंदावन का वास दें, भगवान हमें वृंदावन के दर्शन करने का, वहाँ पर रहने का सौभाग्य प्रदान करें। और हमेशा हृदय में भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि कृष्ण हमें वृंदावन बुला लो। श्रीमती राधा रानी के कृपा के बिना कोई वृंदावन नहीं जा सकता। यूं तो यूं कहना चाहिए कि हम आए वृंदावन ऐसी हमारी औकात नहीं, वो कृष्ण का घर है, वो शुद्ध भक्तों की भूमि है, वो धरातल जहाँ पर साक्षात भगवान परब्रह्म नंगे पैर चलते हैं। तो हमारे अंदर ऐसी क्षमता नहीं, हमारी ऐसी औकात नहीं कि वृंदावन जाएं, परंतु वो करुणामयी है, उनको केवल करुणा बरसाना ही आता है। उस बरसाने वाली को अगर हम प्रार्थना करेंगे तो वो अवश्य कृपा कर दे। और हम आए वृंदावन ऐसी हमारी औकात नहीं, पर राधा रानी बुला ले तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो बुला सकती हैं। इसलिए हृदय में सदैव प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमें वृंदावन जाने के लिए योग्य बनाओ, हम पर कृपा करो। श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करेंगे तो वो अवश्य हमको वहाँ बुलाएंगी। वही अधिष्ठात्री देवी है वृंदावन की। और आज भी यदि हम प्योर हृदय के साथ, शुद्ध भाव के साथ कृष्ण को खोजेंगे तो कहीं ना कहीं वृंदावन में चलते हुए, कभी वृंदावन की परिक्रमा करते हुए, तो कभी राधा कुंड और श्याम कुंड में स्नान करते हुए, कभी रमण नीति में लौटते हुए, कभी कदम्ब के जो वृक्ष हैं उनसे गुजरते हुए, या कभी निधिवन में, सेवा कुंज में, वो ऐसे लगेगा कि यहाँ से राधे कृष्ण गुजरे हैं। उनका स्पर्श, उनका अनुभव अवश्य प्रतीत होता है और ऐसा लगता है कि उनसे मिलकर आए हैं। आगे उद्धव जी विदुर जी से कहते हैं कि भगवान तो अजन्मा है, परंतु फिर भी हम जैसे पतित जीवों पर कृपा करने के लिए अपने शुद्ध भक्तों के प्रार्थनाओं से भगवान इस संसार में आते हैं। वे कहते हैं स्वशांत रूपेश वतारय स्वरूपर अभ्यर्थ्यमानैष्वनुकंपितात्मा परावरेशो महदंशयुक्तो यजोपि जातो भगवान यथाग्नि स्वशांत रूपेश्वतारय स्वरूपर अभ्यर्थ्यमानेश वनुकंपितात्मा परावरेशो महदंशयुक्तो यजोपि जातो भगवान यथाग्नि स्वशांत रूपेश्वतराय स्वरूपाय। स्वशांत रूप मतलब अपने शांत भक्तों के प्रति, इतराय अन्य भक्त अभक्तों, स्वरूपाय अपने गुणों के अनुसार अभ्यर्ध्यमानैश्व यानी सताए जाकर अनुकंपित आत्मा यानी सर्व दयामयी भगवान जो सब पर कृपा करते हैं, वो जब उनके शांत भक्त जो है वो दूसरे अभक्तों के द्वारा सताए जाते हैं, परवर यानी आध्यात्मिक तथा भौतिक ईश नियंत्रक महत अंश युक्तो महत तत्व अंश के साथ ही अजन्म होते हुए भी अपि यद्यपि जातः उत्पन्न होते हैं भगवान यथा अग्नि। वह भगवान कैसे, यथा मानो अग्नि, आग जिस तरह उत्पन्न होती है। अनुवाद, आध्यात्मिक तथा भौतिक सृष्टियों के सर्व दयालु नियंता भगवान अजन्मा है, किंतु जब उनके शांत भक्तों तथा भौतिक गुणों वाले व्यक्तियों के बीच संघर्ष होता है तो वे महत तत्व के साथ उसी तरह जन्म लेते हैं जिस तरह अग्नि उत्पन्न होती है। श्रीला प्रभुपाद की। श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवत भक्त स्वभाव से शांत होते हैं। ये भक्तों की एक बहुत ही मुख्य क्वालिटी है, स्व शांत रूप है, उन्हें शांत, उनको चिंता नहीं होती है। भक्त के ऊपर यदि कोई जुल्म करता भी है ना, तो भक्त कभी उसका बदला लेने की इच्छा ही नहीं करता। बदला लेना तो दूर की बात है, हृदय के अंदर कभी ये इच्छा भी नहीं होती है कि मैं, मुझसे उसने ऐसा किया तो मैं उसको, उसके रिप्लाई में ऐसे करूं, नहीं। उसको उसको सबकी चिंता होती है, वो सबसे कृपा, भगवान से सदैव सबके लिए कृपा की भीख मांगता है। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत भक्त स्वभाव से शांत होते हैं, क्योंकि उनमें कोई भौतिक लालसा नहीं होती है। मुक्त आत्मा लालसा रहित होता है, अतएव उसे शोक नहीं होता। जो व्यक्ति कुछ संपत्ति पाना चाहता है और जब वह उसे खो देता है तो वह शोक करता है। भक्तों में भौतिक संपत्ति के लिए अथवा आध्यात्मिक मोक्ष के लिए कोई लालसा नहीं होती है। वे कर्तव्य के रूप में भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में स्थित होते हैं और वे इसकी परवाह नहीं करते कि वे कहाँ हैं अथवा उन्हें किस तरह कार्य करना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद जी भक्तों की बहुत ही सुंदर व्याख्या करते हैं। उनको कोई टेंशन नहीं होती है, क्यों? क्योंकि उन्हें किसी वस्तु को प्राप्त करने की लालसा नहीं होती है, और ना ही भौतिक जगत की कोई वस्तु, और ना ही मुक्ति की इच्छा होती है। उनको कुछ नहीं चाहिए होता है। और सांसारिक व्यक्ति को क्योंकि वस्तुओं की इच्छा होती है, फिर वो पाने के लिए लालसा, और जब वो खो देता है तो उसके लिए शोक होता है। लेकिन भक्तों के हृदय में कोई लालसा ही नहीं है तो उसके खोने का कोई दुख भी नहीं होता है। तो वे क्या करते हैं, वो कर्तव्य के रूप में भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित। उनका एक ही लक्ष्य होता है, भगवत प्रेम। वो प्रेम उनका इतना प्रगाढ़ होता है कि उसके सामने संसार की प्रत्येक वस्तु तुच्छ लगने लगती है, और वो किसी की परवाह, उनको किसी वस्तु की परवाह नहीं होती, किसी संसार के कार्य की परवाह नहीं होती है। वे किस, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वे कर्तव्य के रूप में भगवान की प्रेमा भक्ति में स्थित होते हैं और वे इसकी परवाह नहीं करते कि कहाँ हैं अथवा किस तरह से कार्य करना चाहिए। कर्मी, ज्ञानी तथा योगी सभी कुछ न कुछ भौतिक या आध्यात्मिक संपत्ति के लिए लालायित रहते हैं। कर्मी जन भौतिक संपत्ति चाहते हैं, ज्ञानी तथा योगी जन आध्यात्मिक संपत्ति चाहते हैं, किंतु भक्तगण कोई भौतिक या आध्यात्मिक संपत्ति नहीं चाहते। वे भौतिक अथवा आध्यात्मिक लोकों में कहीं भी भगवान की इच्छा अनुसार केवल उनकी सेवा करना चाहते हैं, और भगवान ऐसे भक्तों के प्रति सदैव विशेष रूप से ही दयालु होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जो कर्मी होते हैं वो सोचते हैं कि हम कार्य करें और भौतिक संपत्ति प्राप्त हो। योगी जन ये सोचते हैं कि हम यहाँ योग साधना करेंगे। ज्ञानी जन ये सोचते हैं कि यहाँ पर ज्ञान अर्जित करेंगे तो क्या होगा, आध्यात्मिक जगत में सायुज्य मुक्ति प्राप्त होगी, भगवान में लीन हो जाएंगे। परंतु भक्तों को कुछ नहीं चाहिए, न कोई आध्यात्मिक संपत्ति, ना ही ब्रह्म निर्वाण की चिंता, और ना ही भौतिक संपत्ति। उनकी बस एक ही इच्छा होती है कि किसी तरह से कृष्ण को खुश कर सके, कोई सेवा ऐसी मिले, कोई ऐसा कार्य करे जिससे भगवान प्रसन्न हो, और वो भगवान की इच्छा के अनुसार उनकी सेवा करना चाहते हैं। और जब भक्त की ऐसी इच्छा होती है कि मैं भगवान को प्रसन्न करूं, तो डेफिनेटली भगवान की भी इच्छा यही होती है कि मैं कैसे इन भक्तों को प्रसन्न करूं। शास्त्र कहता है भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कुछ भी प्राप्ति हो, प्राप्ति की इच्छा हो, भुक्ति अर्थात भौतिक योग, मुक्ति अर्थात भौतिक जन्म से, जन्म मरण चक्कर से छूट कर भगवान के अंदर समा जाने की इच्छा या सिद्धि, कोई भी योग सिद्धि, यदि हृदय के अंदर कोई भी इच्छा है सकल या शांत, तब तक कभी शांति संभव नहीं। परंतु कृष्ण भक्त निष्काम, उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, वो तो प्रेम करना चाहता है, वो तो कृष्ण को प्रेम देना चाहता है, कृष्ण की सेवा करना चाहता है, इसलिए क्योंकि वो सदैव अपने इच्छाओं से, लालसा से मुक्त रहता है, इसलिए सदैव कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों की प्रकृति के गुणों में विशेष प्रवृत्तियाँ होती हैं, अतएव इतर या अभक्त कहलाते हैं। ये इतर जन जिनमें योगी भी सम्मिलित हैं, कभी कभी भगवत भक्तों को सताते हैं। महान योगी दुर्वासा मुनि ने महाराजा अम्बरीश को इसलिए सताया कि वे भगवान के महान भक्त थे। महान कर्मी तथा ज्ञानी हिरण्यकश्यपु ने अपने ही वैष्णव पुत्र प्रहलाद महाराज को सताया। इतरों द्वारा शांत भगवत भक्तों के सताए जाने के लिए अनेक उदाहरण हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब ऐसा टकराव होता छिड़ता है तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों के प्रति महान कृपावश महत तत्व को नियंत्रित करने वाले अपने स्वांशों के साथ साकार रूप में प्रकट होते हैं। भगवान सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में हैं, और जब उनके भक्तों तथा अभक्तों के बीच संघर्ष हो छिड़ता है तो वे अपने भक्तों के लिए प्रकट होते हैं। जिस तरह पदार्थ के संघर्ष से कहीं भी बिजली उत्पन्न हो जाती है, उसी तरह भगवान सर्वव्यापी होने के कारण भक्तों तथा अभक्तों के संघर्ष के कारण कहीं भी उत्पन्न होते हैं। जब भगवान कृष्ण कृषि उद्देश्य यानी मिशन के लिए प्रकट होते हैं तो उनके सारे स्वांश उनके साथ होते हैं। जब वे वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं तो उनके अवतार के विषय में मतभेद था। कुछ ने कहा वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, कुछ ने कहा वे नारायण के अवतार हैं, दूसरों ने कहा वे क्षीरोदक्षाय विष्णु के अवतार हैं, किंतु वास्तव में वे अवतार नहीं, वे आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं तथा नारायण सारे पुरुष एवं अन्य अवतार उनकी लीलाओं के विभिन्न अंगों का कार्य करने के लिए उनके साथ आते हैं। सुहृद, अंश, युक्त यह संकेत देता है कि उनके साथ पुरुष रहते हैं जो महत तत्व की सृष्टि करते हैं। इसकी पुष्टि इस वैदिक स्तुति महानतम विभूमात्मानम से होती है। जब कंस तथा वसुदेव एवं उग्रसेन के बीच टकराव हुआ तो भगवान कृष्ण बिजली की तरह प्रकट हो गए। वसुदेव तथा उग्रसेन भगवान के भक्त थे और कंस कर्मियों तथा ज्ञानियों का प्रतिनिधि अभक्त था। कृष्ण अपने यथारूप में सूर्य के समान हैं। वे सर्वप्रथम देवकी के गर्भ रूपी सागर से उदित हुए। धीरे धीरे उन्होंने मथुरा के निकटवर्ती स्थानों के निवासियों को तुष्ट किया। जिस तरह सूर्य प्रातःकाल कमल के फूल को प्रफुल्लित कर देता है, क्रमशः द्वारिका के मध्याकाश तक उठकर भगवान सूर्य की ही तरह सारी वस्तुओं को अंधकार में छोड़ते हुए अस्त हो गए, जैसा कि उद्धव ने वर्णन किया। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत ही सुंदर सिद्धांत है कि जब भक्त और अभक्त के बीच में संघर्ष होता है तो भगवान बिजली की तरह प्रकट होते हैं। और भगवान ने कह दिया, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम। जब जब अधर्म बढ़ेगा, जब जब मेरे भक्तों के साथ अन्याय होगा, जब जब कोई मेरे भक्तों को दुखी करेगा तो मैं स्वयं आऊंगा, परित्राणाय, मैं अपने भक्तों की सुरक्षा करने के लिए स्वयं इस धरती पर प्रकट होऊंगा। विनाशाय चतुष्कृतम्, दुष्टों का संहार करूंगा। तो दिखने में भले कभी ऐसा लग सकता है कि जो दुष्ट हैं, जो भक्तों को सताते हैं, वो कितने खुश हैं। कभी कभी लगता है कि उनको भगवान क्यों सजा नहीं दे रहे हैं, क्यों कष्ट नहीं उनको पहुंच रहा है, वो भक्तों को कष्ट वो कब तक करेंगे। एक दिन उनके पाप का कड़ा भर जाएगा और कृष्ण अवश्य आएंगे अपने भक्तों की सुरक्षा करने के लिए। भगवान के अंदर कोई कमी नहीं है, हमें श्रद्धा के साथ प्रयास करते रहना है और धैर्य रखना है। कभी कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि क्यों भगवान नहीं आ रहे, क्यों देर लगा रहे हैं। नहीं, वो देर नहीं करते, कमी हमारे अंदर होती है, हमारी दृढ़ता में कमी होती है, हमारी आस्था में कमी होती है, हमारी श्रद्धा में कमी होती है। वो तो एक क्षण में आ जाते हैं। गजेंद्र ने जब 1000 साल तक युद्ध किया, नहीं बुलाया, वो नहीं आए, लेकिन जैसे ही कहा ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषायाधिबीजाया परेशाया विधीमहि। जैसे ही भगवान को पुकारा तो भगवान परेशान हो गए कि मेरे भक्त के ऊपर विपत्त आई है। वो भाग रहे थे, घरों ने बोला प्रभु आप मेरे ऊपर बैठ जाइए, मैं एक क्षण में आपको गजेंद्र के पास पहुंचा दूंगा। भगवान ने कहा नहीं गरुण, तुम्हारी गति तो बहुत धीमी है, जब तक पहुंचेंगे तब तक कितनी पीड़ा सहनी पड़ेगी, उससे मैं तुम्हारे ऊपर नहीं जाऊंगा। अपनी पादुका छोड़कर, गरुड़ को छोड़कर अपनी गति से भगवान आगे बढ़ते हैं। भगवान कभी, द्रौपदी ने कहा था कृष्ण से कि तुम तो देर करते हो, कृष्ण इतनी देर कर दी, सारी सभा में मेरा कितना अपमान हुआ। कृष्ण ने कहा मुझे बुलाया कब था, है ना, तो मुझे बुलाया, बुला ही नहीं रही थी, कभी किसी की ओर देख रही थी, कभी किसी की ओर देख रही थी, कभी अपने पतियों की ओर, तो कभी धृतराष्ट्र की कृपा के विषय की इच्छा करते हुए, कभी भीष्म पितामह से अनुरोध कर रही थी। मुझे पुकारने में तुमने देर की, मैंने आने में देर नहीं की। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज माम एकम शरणं व्रज, मैं हूं तुम्हारा और केवल मैं ही तुम्हें सुरक्षा प्रदान कर सकता हूँ, इसलिए किसी और का सहारा लेने के सिवाय केवल मुझे ही पुकारो, केवल मुझ पर भरोसा रखो। मैं कभी तुम्हारे भरोसे को नहीं तोड़ूंगा, हर समय तुम्हारे, भगवान तो हमारे साथ हैं। भगवान कहते हैं तुम उदास मत हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। भले ही तुम्हारे सामने प्रकट नहीं हूं, लेकिन इतना करीब हूं कि तुम सोच भी नहीं सकते। आंखें बंद करो, दिल से याद करो, मैं तुमसे अलग नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा विश्वास हूं। बस ये विश्वास का दामन पकड़ के रखना है, कृष्ण कभी हमसे दूर नहीं होते। भगवान के विभिन्न कार्यकलापों को स्मरण करते हुए उद्धव जी विदुर जी से कहते हैं माम खेदयत्ये तदजस्य जन्म विडम्बनम यत् वसुदेव गेहे व्रजे च वासो ऋभयादिवस्वयं पुरा त्वया सीद्यनद्यदनन्त वीर्य माम खेदयत्ये तदजस्य जन्म विडम्बनम यत् वसुदेव गेहे व्रजे च वासो ऋभयादिव स्वयं पुरा त्वयवात्सीद्यदनन्त वीर्य। माम खेदयन्, माम न मुझको, खेदयति यानी पीड़ा पहुंचाता है, एतद अजस्य ये अजन्मा भगवान, जन्म विडम्बनम जन्म मतलब जन्म लेता है, मुर्डम मनम मोहित करता है, क्या करता है, यत जो वसुदेव गे है, वसुदेव के घर में, व्रजे च वास, व्रजे मना वृंदावन में च भी वास निवास करता है, अरि और वो भगवान होते हुए, अजन्मा होते हुए, अरि मना अपने शत्रुओं से भयात, उनसे भयभीत हो जाता है, ऐसा लगता है वो भयभीत हो गया है, इव मानो स्वयं पुरात और स्वयं मथुरापुरी से व्यवात्सीत भाग जाते हैं। यत अनंत वीर्य, वो तो असीम बलशाली है, भगवान के पास संपूर्ण शक्ति है, फिर भी कार्य कैसे करते हैं। अनुवाद देखिए, जब मैं भगवान कृष्ण के बारे में सोचता हूँ कि वे अजन्मा होते हुए भी किस तरह वसुदेव के बंदी गृह में उत्पन्न हुए थे, किस तरह अपने पिता के संरक्षण से व्रज चले गए और वहाँ शत्रु भय से प्रच्छन्न रहते रहे, तथा किस तरह सीम बलशाली होते हुए भी वे भयवश मथुरा से भाग गए, ये सारी भ्रमित करने वाली घटनाएं मुझे पीड़ा पहुंचाती हैं। शिला प्रभुपाद की, शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, चूंकि कृष्ण आदि पुरुष हैं जिनसे सारी वस्तुएं और सारे जीव उद्भूत हुए हैं, अहम सर्वस्य प्रभव, श्रीमद् भगवद गीता 10.8, जन्मादस्य यथा वेदांत सूत्र 112, अतएव उनके तुल्य या कौन से भगवान परम पूर्ण है, और जब भी वे पुत्र, प्रतिद्वंदी या शत्रुवत अपनी दिव्य लीला करते हैं तो वे अपनी भूमिका इतनी पूर्णता से निभाते हैं कि उद्धव जैसे शुद्ध भक्त भी मोहग्रस्त होते हैं। उदाहरणार्थ, उद्धव यह बलि भांति जानते थे कि कृष्ण नित्य विद्यमान रहते हैं और वे सदा के लिए कभी ना तो मर सकते हैं ना विलुप्त हो सकते हैं, फिर भी वे कृष्ण के लिए शोक कर रहे थे। ये सारी घटनाएं उनके परम यश को पूर्णता प्रदान करने के लिए मानो पूर्ण व्यवस्थाएं हैं, यह सब आनंद के निमित्त हैं। जब पिता अपने नन्हे से बेटे के साथ खेलता है और वह जमीन पर लेटता है मानो बेटे द्वारा पराजित हो गया हो, तो यह केवल उस नन्हे बेटे को आनंद प्रदान करने के लिए है और कुछ नहीं, जो कि भगवान सर्वशक्तिमान है। अतएव जब वे जन्म अजन्म शक्ति तथा पराजय, भय तथा अभय जैसे विलोमों को समंजित कर सकते हैं, एक शुद्ध भक्त भली भांति जानता है कि भगवान के लिए विरोधाभासों को समंजित करना कैसे संभव है, किंतु वह उन अभक्तों के लिए शोक करता है जो भगवान के परम यशों को ना जानते हुए उन्हें इसलिए काल्पनिक सोचते हैं क्योंकि शास्त्रों में ऊपरी तौर पर उनके विरोधी कथन पाए जाते हैं। वस्तुतः कुछ भी विरोध मूलक नहीं है। जब हम भगवान को भगवान के रूप में समझ लेते हैं और पूर्णताओं से युक्त अपने समान उन्हें नहीं मानते तो सब कुछ संभव हो जाता है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी भगवान के विषय में बता रहे हैं कि भगवान पूर्ण है, इसलिए जब भी वो कुछ भी लीला करते हैं, चाहे वो प्रतिद्वंद्वी बने, चाहे वो पुत्र बने, चाहे वो प्रेमी बने, चाहे कुछ भी बने, तो पूर्णता से करते हैं। उनका कोई कार्य ऐसा नाटक नहीं लगता। हम तो कोई भी कार्य करते हैं तो ऐसा लग रहा होता है जैसे उसमें पूर्णता नहीं आती, लेकिन भगवान के कार्य पूर्ण होते हैं। तब भगवान जब इस भौतिक जगत में लीला समाप्त करके जाते हैं, शुद्ध भक्त भी मोहित हो जाते हैं जो जानते हैं कि भगवान हर क्षण उनके साथ हैं, कभी छोड़ के जा नहीं सकते, फिर भी वो विरह का अनुभव करते हैं क्योंकि यही पूर्णता है, भगवान चाहते हैं। इसीलिए तो भक्तों के हृदय में सदैव एक पीड़ा, एक टीस रहती है कि हमें कृष्ण से मिलना है। वो जानते भी हैं कि कृष्ण हृदय में है, कृष्ण मुझसे दूर नहीं है। ये अचिंत्य भेदाभेद सब भाव है। गोपियां नहीं जानती क्या कृष्ण वृंदावन को छोड़कर कभी नहीं जाते, क्या राधा रानी को पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो विरह में तड़पते हैं। क्या चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से भिन्न नहीं है? वो कृष्ण का अवतार नहीं, वो साक्षात कृष्ण है। फिर भी वो तड़पते हैं, वो तड़प के दिखाते हैं, वो बताते हैं हमें। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविंद विरहेण मे। हे गोविंद, आपके विरह में एक एक पल एक एक युग के समान प्रतीत होता है और नेत्रों से बारिश की तरह अश्रु धाराएं बहती हैं तथा सारा संसार शून्य सा प्रतीत होता है। वो हमें दिखा रहे हैं कि जब तक ये अवस्था नहीं आएगी, जब तक इतना विरह अनुभव नहीं करेंगे, तब तक नहीं मिलेंगे। इसलिए श्री प्रभुपाद जी मुख्य बात ये बता रहे हैं कि जब हम भगवान को भगवान के रूप में समझ लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि वो जो कुछ कर रहे हैं उनकी लीला है और उनकी लीलाएं पूर्ण हैं, उसमें कभी संदेह या संशय नहीं करते और अपूर्णताओं से युक्त अपने समान उन्हें नहीं मानते हैं, तो ये भी जान लेते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकते हैं। आगे उद्धव कहते हैं, दुनोति चेतः स्मरतो मम एतद् यदाह पादा वभिवन् द्यत्पित्रो ताताम्बकं सा दुरुशङ्कितानां प्रसीदतं नो कृतनिष्कृतीनां। दुनोति चेतः स्मरतो मम एतद् यदाह पादा वभिवन्द्य पत्पित्रो ताताम्बकं सा दुरुशङ्कितानां प्रसीदतं नो कृतनिष्कृतीनां। शब्दार्थ, दुनोति चेत स्मरतो मम एतत्। दुनोति अर्थात मुझे बहुत पीड़ा होती है, पीड़ा पहुंच जाता है। चेत हृदय, स्मरत सोचते हुए, मम मेरा, एतद यह। यदाह पादा वभिवंद्यत पित्रो, यत जितना, आह कहा, पादों यानी चरणों की अभिवंद्य पूजा करके पित्रो अपने माता पिता को। ताताम्बकं सा दुरुशङ्कितानां, ताताम् हे पिताजी, अम्ब हे माताजी, कंसात् कंस से, उरु महान, शङ्कितानां भयभीत का, प्रसीदतम् नो कृतनिष्कृतीनां, प्रसीदतम् प्रसन्न हो, न हमारा अकृत संपन्न नहीं हुआ, निष्कृतीनां आपकी सेवा करने का कर्तव्य। अनुवाद, भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता से उनके चरणों की सेवा ना कर पाने की अपनी कृष्ण तथा यानी बलराम की अक्षमता के लिए क्षमा मांगी, क्योंकि कंस के विकट भय के कारण वे घर से दूर रहते थे। उन्होंने कहा, हे माता, हे पिता, हमारी असमर्थता के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। भगवान का यह सारा आचरण मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचाता है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसा लगता है कि कृष्ण तथा बलराम दोनों ही कंस से अत्यधिक भयभीत थे, इसीलिए उन्हें अपने आप को छिपा कर रखना पड़ा। किंतु यदि कृष्ण तथा बलराम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, तो यह कैसे संभव हो सकता है कि वह कंस से भयभीत हैं? क्या ऐसे कथनों में कोई विरोध है? वसुदेव कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उन्हें संरक्षण प्रदान करना चाहते थे। उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि कृष्ण परमेश्वर हैं और वे स्वयं अपनी रक्षा कर सकते हैं। उन्होंने कृष्ण को अपना पुत्र समझा, क्योंकि वसुदेव महाभागवत थे, अतएव वे यह सोचना नहीं चाहते थे कि कृष्ण उनके अन्य पुत्रों की तरह मार डाले जाएं। नैतिक दृष्टि से वसुदेव कृष्ण को कंस के हाथों सौंपने के लिए वचनबद्ध थे, क्योंकि उन्होंने सारी संतानें उसे दे देने का वचन दिया था। किंतु कृष्ण के प्रति आघात प्रेम के कारण उन्होंने अपना वचन तोड़ा। वसुदेव की इस दिव्य मनोवृत्ति पर भगवान अत्यधिक प्रसन्न थे। वे वसुदेव के आघात स्नेह को विचलित नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने अपने पिता द्वारा नंद तथा यशोदा के घर ले जाया जाना स्वीकार कर लिया। फिर वसुदेव के प्रगाढ़ प्रेम की परीक्षा करने के लिए जब उनके पिता नदी पार कर रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने यमुना के जल में गिर पड़े थे, तब वसुदेव अपने पुत्र को उफनती नदी के बीच में फिर से पा लेने के लिए प्रयास में बावले हो गए थे। ये सब भगवान की महिमा मंडित लीलाएं हैं, और ऐसे प्रदर्शन में कोई विरोधाभास नहीं है। क्योंकि कृष्ण परमेश्वर हैं, अतः वे कंस से कभी भी भयभीत नहीं थे, किंतु अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने ऐसा करना स्वीकार किया। उनके परम चरित्र का सबसे यशस्वी अंश यह था कि उन्होंने अपने माता पिता से इसलिए क्षमा मांगी कि कंस के भय से घर से अनुपस्थित रहने के कारण वे उनके चरणों की सेवा नहीं कर पाए। वे भगवान जिनके चरण कमलों की पूजा ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता द्वारा की जाती है, सदैव वसुदेव के चरणों की पूजा करना चाहते थे। भगवान द्वारा विश्व को दिया गया ऐसा उपदेश अत्यंत उपयुक्त है। चाहे कोई भगवान ही क्यों न हो, उसे अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। पुत्र अनेक प्रकार से अपने माता पिता का ऋणी होता है, और पुत्र चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसका यह कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता की सेवा करे। अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण उन नास्तिकों को, जो ईश्वर के परम पितृवत को स्वीकार नहीं करते हैं, शिक्षा देना चाहते हैं, और वे इस कार्य से यह सीख सकते हैं कि परम पिता का कितना अधिक सम्मान किया जाना चाहिए। उद्धव भगवान के ऐसे यशस्वी आचरण पर आश्चर्यचकित थे, और वे अत्यंत दुखी थे कि वे उनके साथ क्यों नहीं कूच कर सके। श्री प्रभुपाद की जय। अत्यंत ही सुंदर शिक्षा यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी प्रदान कर रहे हैं कि भगवान जो कि त्रिलोकी के नाथ हैं, ब्रह्मा शिव और अनेक अनेक लक्ष्मियां जिनके चरणों की दासी हैं और सेवा करती हैं, वो भगवान भी जब इस धराधाम पर आते हैं तो उनको उनका भी कर्तव्य रहता है कि वो अपने माता पिता की सेवा करें। इसीलिए जब उनके माता पिता की इच्छा से ही वो मथुरा छोड़कर नंद बाबा के यहाँ गए थे, वसुदेव जी उनसे इतना प्रेम करते थे कि अपने वचन को तोड़कर उनको नंद के घर छोड़कर आए, परंतु फिर भी जब वापस भगवान आए तब भगवान से क्षमा मांगते हैं। भगवान अपने माता पिता को कहते, तातांब कंसा दुरुशंकितानाम प्रसीद तम नो कृत निष्कृति नाम। मैं अपने कर्तव्यों को पूरा न कर सका, आपकी सेवा करने का मेरा परम कर्तव्य, परंतु कंस के भय से मैं मथुरा छोड़ के चला गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे माता, हे पिता, हमारी असमर्थता के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। तो भगवान होकर भी यदि वो ये अपने माता पिता से क्षमा मांग रहे हैं, तो साधारण व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उन्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। माता पिता का बहुत ऋण होता है हमारे पर, इसलिए माता पिता को सदैव प्रसन्न रखना चाहिए। और अगर इसी बात को और भी गूढ़ता से लिया जाए तो भगवान कहते हैं, पितामहस्य जगतो माता दाता पितामह। यहाँ पर जो तुम्हारे माता पिता हैं वो एक जन्म के हैं, परंतु मैं तो तुम्हारा जन्म जन्मांतर का पिता हूँ। इसलिए इसी सिद्धांत के अनुसार हमें अपने परम पिता कृष्ण को सदैव प्रसन्न करने के लिए उत्सुक रहना चाहिए, सदैव भगवान की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वही हमारे परम पिता हैं। जब इस जन्म के माता पिता की सेवा करने के लिए शास्त्र इतना अनुरोध करता है, तब हम सोच सकते हैं कि कृष्ण के प्रति हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। कृष्ण को प्रसन्न करना, कृष्ण को खुश करना, कृष्ण के लिए कार्य करना, इसी से हम खुद भी आनंदित हो सकते हैं, क्योंकि जब कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो पूरी सृष्टि प्रसन्न होती है। अत्यंत सुंदर रीति से उद्धव जी भगवान के सानिध्य के विषय में कहते हैं, कोवा उमुष्यांग्रि सरोज रेणु विस्मर तुमीश। क्षमा, कोवा अमुष्यांग्रि सरोज रेणु विस्मर्तुमीश विस्मर्तुमीशीत पुमान् विजिंग्रन् यो वस्फुरद्ब्रू विटपेन भूमे भारं कृतांतेन तीरश्चकार। कोवा अमुष्यांग्रि सरोज रेणु विस्मर्तुमीशीत पुमान् विजिग्रन् यो वस्फुरद्ब्रू विटपेन भूमेर् भारं कृतांतेन तीरश्चकार। को वा और कौन, वा मना अथवा, ऐसा कौन होगा। अमुष्य अंग्रि, अमुष्य मतलब भगवान के, अंग्रि मना पांव, सरोज रेणु यानी भगवान के चरण कमलों की जो रेणु है, धूल है। विस्मर्तुम यानी भुलाने के लिए, ईशित असमर्थ हो, सॉरी समर्थ हो सके, पोमान मनुष्य, विजंग्रिन सूंघते हुए, यह विस्फुरत विस्तार करते हुए, भगवान के चरण कमलों की चरण रेणु को जिसने एक बार उसकी सुगंध को टेस्ट किया है, उसको जब उसने सूंघा है, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि उसको संसार की कोई और वस्तु आकर्षित कर सके। आगे कहते हैं, यो विस्फुरद, भगवान विस्तार करते हैं, ब्रू विटपेना अर्थात भूओं की पत्तियों के द्वारा, भूमि पृथ्वी का भारम भार, कृतन तेन मृत्यु प्रहार तिरश्चकार अर्थात संपन्न किया। अनुवाद, भला ऐसा कौन होगा जो उनके चरण कमलों की धूल को एक बार भी सूंघ कर उसे बुला सके। कृष्ण ने अपनी भवों की पत्तियों को विस्तीर्ण करके उन लोगों पर मृत्यु जैसा प्रहार किया जो पृथ्वी पर भार बने हुए थे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान कृष्ण को मनुष्य नहीं माना जा सकता, भले ही उन्होंने आज्ञाकारी पुत्र की भूमिका ही क्यों ना निभाई हो। उनके कार्य इतने असामान्य थे कि वे केवल अपनी भवों को उठाकर वे उन लोगों पर मृत्यु प्रहार कर सके जो पृथ्वी पर भार हुए थे। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, तब भले ही भगवान ने अस्त्र नहीं उठाए थे, परंतु फिर भी वो सारे भगवान के नेत्रों से ही घायल एक बार जो कृष्ण को देख ले, वो कृष्ण को कभी नहीं भुला सकता। कभी भी कृष्ण के, जो एक बार कृष्ण के चरण कमलों की रेणु को सूंघ लेता, एक बार जब कृष्ण का आस्वादन हो जाए, रसवर्जम रसोप्यस्य, परम दृष्टवा निवर्तते। जिसने ये हायर टेस्ट एक बार ले लिया हो उसे संसार का टेस्ट तुच्छ लगने लगता है। इसीलिए यामुनाचार्य जी कहते हैं, यदवधि मम चेतः कृष्ण चरणारविंदे नव नव रस धाम्यन्युद्धितम् आसीतमन्तम् तदवधि बत नारी संगमे स्मरणमानि मुख विकार सुष्ठु निष्ठीवनम् च। संसार का जो रस होता है उसमें और भगवान के जो प्रेम का आनंद होता है उसमें एक बहुत बड़ा अंतर है, जानते हो क्या? संसार का जो रस होता है, जो आनंद होता है, जो प्रेम होता है, वो क्षण प्रतिक्षण घटता है। आप देखिए, जिसको खाने का शौक है उसके सामने एक बार जब खाना आता है तो उसको कितना टेस्टी लगता है, फिर उसी के साथ दूसरा प्लेट आया, तीसरा प्लेट आया, चौथा प्लेट आया, पांचवा प्लेट आया, छठा आया, सातवां आया, फिर वो खा सकेगा चाहे वो कितना ही उसका मन पसंद का हो, लेकिन बस उसे अब नहीं अच्छा लगे और खाएगा तो क्या होगा, फिर वो वोमेंट कर देगा। उसी तरह जिसको भौतिक आनंद कहीं से भी कुछ भी पसंद लगता है वो उसको जितना वो भोगता है उतना उसके लिए टेस्टलेस हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक आनंद, कृष्ण के प्रेम का जो रस है, अब जो जो भागवत कथा नहीं सुनते उनको नहीं पता उसके बारे में, फिर लेकिन जो एक बार सुनता है उसको लगता है सुनना चाहिए, फिर धीरे धीरे जो सुनने की एक लत लग जाती है, एक आदत पड़ जाती है, फिर कथा श्रवण करने के बगैर रहा नहीं जाता, ऐसा लगता है ये कथा ही मेरा प्राण है। तो जैसे जैसे कृष्ण के साथ संबंध जुड़ता है, कृष्ण के लीलाओं में, कृष्ण के प्रेम में जितना जितना भक्त आगे बढ़ता है, कृष्ण उसका सर्वस्व बनते जाते हैं, उसमें उसको उतना ही आनंद आने लगता है। हमको अभी इतना आनंद नहीं आता ना, क्योंकि हम अभी तक इतना प्रगाढ़ प्रेम कर नहीं पाए। वृंदावन में वो भक्त जो हम देखते हैं वो कृष्ण को प्रेम करने के लिए क्या नहीं करते, सुबह से लेकर रात तक बस कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं, वो गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं लेटते हुए, है ना। हम तो कभी जाते हैं तो शूज उतार के परिक्रमा करने में भी हमको कठिन लगता है ना, लेकिन फिर भी उनका प्रेम उसी में उनको आनंद आ रहा होता है, ऐसा नहीं वो कष्ट उनको लग रहा होता है, उसी में वो आनंद। जितना जितना कृष्ण के साथ हमारे संबंध प्रगाढ़ होता जाएगा, फिर देखने वाले को लगेगा, दूसरे लोग को लगेगा, अरे बेचारे भक्त हैं सुबह सवेरे 5 बजे उठते हैं, फिर उनको कितनी सेवा करनी पड़ती है, भगवान की प्रसाद बनाना पड़ता है, आरती करनी पड़ती है, और फिर ये 16 माला जप करना पड़ता है, बाहर बेचारे कुछ खाते नहीं, दूसरों के लिए कष्ट लगेगा, लेकिन भक्त को उसमें इतना आनंद आ रहा होता है, इतना आनंद आ रहा होता है, संसार भर का सुख उसे कृष्ण सेवा में लगता है। और यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जब एक बार कृष्ण चरणों की रज का आस्वादन हो जाए, गोवा आमुष्यांग्रि सरोज रेणु विस्मर तुमी शीत पोमान विचिक्रन, एक बार हो जाए तो भला ऐसा कौन होगा जो उसको विस्मरण कर सके, क्योंकि वो साधारण नहीं है, वो अपने केवल भ्रुकुटी के भय से सागर तप तो बलते देखा, पूरे केवल भवों की पत्तियों को विस्तीर्ण करने से वो पूरे जितने भी जीव हैं उनको उनका प्रलय कर सकता है सारे ब्रह्मांडों के। उद्धव जी भगवान की प्रत्येक लीला प्रत्येक प्रसंग को याद करते हैं, वे कहते हैं, दृष्ट्वा भवद्भिर् ननुराज सूये चेद्यस्य कृष्णं द्विशतोऽपि सिद्धि यां योगिना संस्पृहयन्ति सम्यक् योगेन कस्तद् विरहं सहेत। दृष्ट्वा भवद्भिर्ननुराजसूये चेदस्य कृष्णं द्विशतोऽपि सिद्धि यां योगिना संस्पृहयन्ति सम्यक् योगेन कस्तद् विरहं सहेत। दृष्ट्वा भवद्भिर्ननुराजसूये, दृष्ट्वा देखी गई भवद भी आपके द्वारा ननु निसंदेह राजसूय महाराज युधिष्ठिर के द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ की सभा में। यहाँ पर उद्धव जी विदुर जी को बोल रहे हैं कि आप भी तो वहाँ पर थे जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया था, वहाँ पर आपने भी देखा था। क्या देखा था? चेदस्य कृष्णम द्विशतोपि सिद्धि। चेदस्य चेदिराज शिशुपाल के द्वारा कृष्णम यानी कृष्ण के प्रति द्विशता ईर्ष्या से अपि उसके बावजूद सिद्धि सफलता। याम योगिना संस्पृहयन्ति सम्यक्। याम जो योगिना योगीजन संस्पृहयन्ति अर्थात तीव्रता से सम्यक इच्छा करते हुए। सम्यक सम्यक का मतलब है पूर्ण रूपेण। योगेना योग द्वारा कह। आगे वे कहते हैं कस्ताद्विरहम सेहत सहेत। कस्ताद अर्थात कौन ऐसा होगा जो उनका विरहम विच्छेद सहित सहित अर्थात सहन कर सकेगा। आपने देखा उन्वाद देखिए। आप स्वयं देख चुके हैं कि चेदी के राजा शिशुपाल ने किस तरह योगाभ्यास में सफलता प्राप्त की। यद्यपि वे भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता था, वास्तविक योगी भी अपने विविध अभ्यासों द्वारा ऐसी सफलता की सुरुचिपूर्वक कामना करते हैं। भला उनके विछोह को कौन सह सकता है। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान कृष्ण की अहितु की कृपा का प्राकट्य महाराज युधिष्ठिर की विराट सभा में हुआ था। वे अपने शत्रु चेदी के राजा पर भी कृपालु थे। वे सदैव भगवान का ईर्षालु प्रतिद्वंद्वी बनने का प्रयास करता रहा। चूंकि भगवान का प्रामाणिक प्रतिद्वंद्वी बनना संभव नहीं है, अतः चेदी का राजा भगवान कृष्ण का अत्यधिक द्रोही था। इस बात में वह अन्य असुरों यथा कंस तथा जरासंध की ही तरह था। शिशुपाल ने महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न होने वाले राजसूय यज्ञ की खुली सभा में भगवान कृष्ण का अपमान किया और अंत में वह भगवान द्वारा मार दिया गया। किंतु उस सभा के हर एक व्यक्ति ने देखा कि चेदी के राजा के शरीर से प्रकाश की एक किरण निकली जो भगवान कृष्ण के शरीर में लीन हो गई। इसका अर्थ हुआ कि चेदी राज को सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई, जिसकी तीव्र इच्छा ज्ञानियों तथा योगियों को रहती है और जिसके लिए वे अनेक प्रकार के दिव्य कार्य संपन्न करते हैं। यहाँ पर कृष्ण की असीम करुणा का प्राकट्य है कि वो शिशुपाल जो कृष्ण से के साथ कितनी शत्रुता रखता था, कितना द्रोह करता था, कि जैसे छोटा बच्चा होता है ना, पैदा होता है, वो जब बात करना सीखता है तो क्या बोलता है, मम्मा पप्पा छोटा छोटा बोलता है ना। लेकिन चेदी नरी शिशुपाल ने जब बोलना सीखा, उसी समय से वो भगवान के प्रति विद्रोह करता था, कृष्ण के प्रति वो बहुत ही असह्य शब्द बोलता था। और राजसूय सभा में तो उसने हद कर दी, इतना बोल रहा था, इतना। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को यह वचन दिया था कि जब तक 100 अपराध करेगा मैं उसको क्षमा कर दूंगा, 100 से भी बढ़ गया, बोलता गया, और भगवान श्री कृष्ण ने उसको अपने सुदर्शन से मार डाला। और उस सभा में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति ने देखा कि उसके शरीर से प्रकाश निकलकर भगवान के अंदर समा गया। भगवान ने उस विद्रोह करने वाले को भी मुक्ति प्रदान कर दी, ऐसी मुक्ति जो ज्ञानी जन और योगी जन हजारों साल की तपस्या करके संपन्न करके ऐसी मुक्ति को प्राप्त करते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं ये तथ्य है कि जो लोग मानसिक चिंतन या योग शक्ति के निजी प्रयासों द्वारा परब्रह्म को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें वही लक्ष्य प्राप्त होता है जो उन लोगों को प्राप्त होता है जिनका वध स्वयं भगवान द्वारा किया गया है। दोनों ही को भगवान के दिव्य शरीर के ब्रह्म ज्योति की किरणों में तदात्म्य होने की मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान अपने शत्रु पर भी कृपालु थे और चेदी राज की सफलता उन सबों द्वारा देखी गई जो सभा में उपस्थित थे। विदुर भी वहां उपस्थित थे, इसलिए उद्धव ने इस घटना का स्मरण कराया। अत्यंत ही सुंदर रीति से उद्धव भगवान की कृपा करुणा भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। हम इसी प्रेम और भाव से उनको श्रवण करने का आनंद लेंगे। आप सबका बहुत 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 उपकार है जो आप सब मेरे लिए प्रार्थना करते हो। कृपया सदैव प्रार्थना करते रहिएगा ताकि हम मिलकर इस अद्भुत ग्रंथ को समझकर और श्रवण करके अपने जीवन को सफल कर सकें। हरे कृष्ण हरे बोल।